नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं निखिल कुमार। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने गाजा में शेष सभी बंधकों की रिहाई के लिए तत्काल बातचीत शुरू करने को कहा, साथ ही गाजा में बड़े सैन्य हमले को भी मंजूरी दी। कोलंबिया में पूर्व FARC गोरिल्ला आंदोलन के दो असंतुष्ट समूहों के बीच दो अलग अलग झड़पों में 18 लोग मारे गए और 40 से ज्यादा घायल, और दक्षिण अमेरिका के ड्रेक पैसेज क्षेत्र में जोरदार भूकंप आया। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। 3 दिन की रूस यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी भेंट की तथा क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर विचार विमर्श के साथ द्विपक्षीय एजेंडे की समीक्षा की। दोनों देशों ने संतुलित तरीके से द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने का संकल्प लिया। बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने गैर शुल्क व्यवधानों और विनियामक बाधाओं को तेजी से दूर करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से भारत और रूस के संबंध विश्व के भरोसेमंद संबंधों में से रहे हैं। उन्होंने कहा कि भू राजनीतिक तालमेल, नेतृत्व संपर्क और भावनात्मक लगाव इन संबंधों का प्रमुख आधार रहा है।
After the Second World War, geopolitical convergence, leadership contacts, and popular sentiment remain its key drivers. We reaffirmed our shared ambition to expand bilateral trade in a balanced and sustainable manner, including by increasing India's exports to Russia. This requires swiftly addressing non-tariff barriers and regulatory impediments.
दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन, पश्चिम एशिया और अफगानिस्तान की स्थिति पर भी विचार विमर्श हुआ। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने गाजा में शेष सभी बंधकों की रिहाई के लिए तत्काल बातचीत शुरू करने को कहा है, साथ ही उन्होंने गाजा पर एक बड़े हमले की भी मंजूरी दी। सोमवार को हमास ने कतर और मिस्र के 60 दिन के युद्ध विराम प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की थी। इस प्रस्ताव के तहत 50% बंधकों को रिहा किया जाना है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और जोर देकर कहा कि इसराइल सभी बंधकों की एक साथ रिहाई चाहता है। इस बीच इसराइल की सेना ने गाजा में बड़े जमीनी हमले की तैयारी शुरू कर दी है। वहां रह रहे लोगों को स्थान खाली करने और दक्षिण की ओर जाने को कहा गया है। कोलंबिया में कल दो अलग अलग हमलों में 18 लोग मारे गए और 40 से अधिक घायल हुए। अधिकारियों के अनुसार दोनों ही हमले पूर्व कोलंबियाई क्रांतिकारी सशस्त्र बल FARC गोरिल्ला आंदोलन के असंतुष्ट समूहों से जुड़े हैं। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार दक्षिण पश्चिम में देश के तीसरे सबसे बड़े शहर कैली में कोलंबियाई एरोस्पेस फोर्स बेस के पास विस्फोटकों से लदे एक वाहन में विस्फोट हो गया। इस विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो गई और 71 अन्य घायल हो गए। उसी दिन एंटीओक्विया विभाग में स्थित अमाल्फी नगरपालिका में कोका फसल उन्मूलन अभियान के दौरान राष्ट्रीय पुलिस द्वारा संचालित एक ब्लैक हॉक UH-60 हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया। इस हमले में 12 अधिकारी मारे गए। कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने हिंसा की निंदा की है और पूर्व कोलंबियाई क्रांतिकारी सशस्त्र बल के उन गुटों की ओर इशारा किया जिन्होंने 2016 के शांति समझौते के बाद भी हथियार डालने से इनकार कर दिया था। इस शांति समझौते का उद्देश्य दशकों से चले आ रहे आंतरिक संघर्ष को समाप्त करना था, जिसमें 4.5 लाख से अधिक मौतें हुई हैं। भारत के पहले मानव रहित अंतरिक्ष मिशन गगनयान की पहली परीक्षण उड़ान अर्धमानव रोबोट व्योममित्र के साथ इस वर्ष दिसंबर में होने की आशा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कल नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब तक गगनयान के 80% लगभग 7,700 परीक्षण हो चुके हैं, शेष 2,300 परीक्षण अगले वर्ष मार्च तक पूरे कर लिए जाएंगे।
In another 2 to 3 months, we are going to have a 6,500 kg communication satellite of USA going to be launched using our launch vehicle. And till today, 433 satellites of 34 countries are done from India.
इसरो की अन्य उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री नारायण ने कहा कि इस वर्ष अब तक ग्लैक्स 2025 और उच्च दबाव के विद्युत प्रणोदन प्रणाली सहित 196 उपलब्धियां हासिल हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका का 6,500 किलोग्राम का संचार उपग्रह भारतीय प्रक्षेपण स्थल से प्रक्षेपित किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस वर्ष आदित्य L1 उपग्रह से 13 टेराबिट डेटा वैज्ञानिकों को उपलब्ध कराया गया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। थाईलैंड में बैंकॉक की एक अदालत ने आज विवादास्पद अरबपति और पूर्व थाई प्रधानमंत्री थॉकसिन खिनावात्रा से जुड़े एक राजद्रोह मामले को खारिज कर दिया है। ये आरोप 10 साल पहले श्री थॉकसिन द्वारा एक दक्षिण कोरियाई अखबार को दिए गए साक्षात्कार से संबंधित है। अगर दोषी ठहराया जाता तो उन्हें 15 साल तक की जेल हो सकती थी। थाईलैंड का राजद्रोह कानून राजशाही का अपमान करने से रोकता है। ईरान ने कल उत्तरी हिंद महासागर और ओमान सागर में 2 दिन का मिसाइल अभ्यास शुरू किया। सस्टेनेबल पावर 1404 नामक ये अभ्यास जून में हुए 12 दिवसीय युद्ध के बाद ईरान का पहला बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास है। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने सतह और उपसतह युद्धपोतों, वायु इकाइयों, मिसाइल रक्षा बैटरियों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध ब्रिगेड की तैनाती की सूचना दी। नौसेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल अब्बास हसनी ने एक समाचार एजेंसी को बताया कि अभ्यास में नासिर और कादिर जैसे सटीक मारक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। ये अभ्यास कैस्पियन सागर में रूस के साथ कैसर एक्स 2025 संयुक्त अभ्यास लगभग 1 महीने बाद हुआ है। सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय ने नुसुक उमराह सेवा शुरू की है। इसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय तीर्थयात्री बिना किसी बिचौलिए के सीधे ऑनलाइन उमराह वीजा के लिए आवेदन कर सकेंगे और संबंधित सेवाओं की बुकिंग कर सकेंगे। वेबसाइट umrah.nusuk.se पर उपलब्ध इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य तीर्थ यात्रा को व्यवस्थित करना है। नीदरलैंड्स ने 1 दिसंबर से पोलैंड में लगभग 300 सैनिकों और उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों की तैनाती की घोषणा की है। इनमें 2 पैट्रियट मिसाइल प्रणालियां और ड्रोन रोधी क्षमताएं शामिल हैं। नीदरलैंड्स के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य नेटो क्षेत्र की रक्षा करना और जारी संघर्ष के बीच रूस के आक्रमण को रोकना है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ मुकेश कुमार बल।
भारत ने बल्गारिया में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कल 2 रजत पदक जीते। महिलाओं के 55 किलोग्राम भार वर्ग में रीना ने रजत पदक, उधर 76 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में प्रिया मलिक ने भी रजत पदक जीता। इस बीच 2024 कैडेट विश्व कप चैंपियन और मौजूदा अंडर-20 एशियाई चैंपियन काजल ने 72 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में प्रवेश किया। प्रतियोगिता में अब भारत के पदकों की संख्या 5 हो गई है, जिसमें 1 स्वर्ण और 4 रजत पदक शामिल हैं। उधर कजाकिस्तान में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कल रुद्राक्ष पाटिल, अर्जुन बबूता और किरण जाधव ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं जूनियर वर्ग में मानसी रघुवंशी ने महिलाओं की कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि यशस्वी राठौर ने रजत पदक पर कब्जा किया। और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में कल 17 वर्षीय मोहसिन अली ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। डल झील में शिकारा चलाने वाले मोहसिन ने 1000 मीटर कैकिंग प्रतियोगिता में 4:12.41 का समय लेकर ओडिशा और मध्य प्रदेश के प्रतियोगियों को हराया। उत्तर प्रदेश के विशाल कुमार ने पुरुषों की 1000 मीटर कैनो एकल में 4:30.59 का समय लेकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिलाओं की 200 मीटर कैनो एकल स्पर्धा में ओडिशा की रश्मिता साहू ने 53.59 का समय लेकर स्वर्ण पदक जीता।
दक्षिण अमेरिका के ड्रैक पैसेज क्षेत्र में एक जोरदार भूकंप आया है। अमेरिका भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर पहले 8 बताई थी, लेकिन बाद में इसे घटाकर 7.5 बताया गया। स्पेन में वर्ष 2006 के बाद से सबसे भीषण जंगल की आग लगी है। इसके कारण लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि जलकर राख हो गई है। 2022 में यह आंकड़ा लगभग 3 लाख हेक्टेयर था। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2023 की हिंसा से जुड़े 8 मामलों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान को कल जमानत दे दी। क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान के खिलाफ 2023 के देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों और सरकारी तथा सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमलों के कई मामले दर्ज किए गए थे। वो 2023 से जेल में है और सरकारी उपहारों से जुड़े मामले तथा 19 करोड़ पाउंड के भ्रष्टाचार के मामले में सजा काट रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में शेष सभी बंधकों की रिहाई के लिए तत्काल बातचीत शुरू करने को कहा। साथ ही गाजा पर बड़े सैन्य हमले को भी मंजूरी दी। कोलंबिया में पूर्व FARC गोरिल्ला आंदोलन के 2 असंतुष्ट समूहों के बीच 2 अलग अलग झड़पों में 18 लोग मारे गए और 40 से ज्यादा घायल हुए। और दक्षिण अमरीका के ड्रैक पैसेज क्षेत्र में जोरदार भूकंप आया। इसके साथ विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।